ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धोभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण तो आज से 3 दिन राम कथा हम करने का प्रयास कर रहे हैं। रामनवमी का महोत्सव बहुत करीब है तो इस उत्सव के दौरान श्री राम का गुणगान तो आवश्यक है। श्री राम का नाम किसने नहीं सुना है। श्री राम हम सब के लिए आदर्श व्यक्ति हैं। वो भगवान तो हैं फिर भी मनुष्य समाज में प्रकट हुए और यहाँ प्रकट होकर सारे दुनिया को ये दिखलाया कि आदर्श इंसान कैसे होता है। यद्यपि जब भगवान श्री इट वॉज ओके बिफोर पहले जो था वो ठीक था अभी हाथ नहीं लगाई। हरे कृष्ण यस 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 यद्यपि भगवान जब प्रकट होते हैं विभिन्न योनियों में कभी जलचर प्राणियों के समाज में तो कभी पक्षियों के समाज में तो कभी पशुओं के समाज में कभी ऋषियों के समाज में तो कभी देवों के लोकों में कभी मनुष्य समाज में. जिस समाज में भगवान प्रकट होते हैं वो बिल्कुल उसी तरह बर्ताव करते हैं जैसे उस समाज का कोई सदस्य करता है. जब जलचर प्राणी के रूप में प्रकट होते हैं तो पानी में तैरते हैं जैसे कि मत्स्य अवतार में उन्होंने किया. जब श्री राम बन के आए मनुष्य समाज में तो समुद्र तैर के नहीं गए, उनको पुल बनाना पड़ा, सेतु बनाना पड़ा. ऐसा नहीं कि वो तैर के नहीं जा सकते थे, या ऐसा नहीं है कि वो छलांग मार के नहीं जा सकते थे, परंतु मनुष्यों के लिए ऐसा संभव नहीं होता है. और वो मनुष्य समाज में प्रकट हुए थे इसलिए उनके लिए एक सेतु या पुल बांधना आवश्यक था. तो वैसे भगवान जिस समाज में प्रकट होते हैं ऐसे प्रतीत होता है कि वो मानो उसी समाज के ही सदस्य हैं. और जो अज्ञानी लोग होते हैं भगवान को वैसे ही समझते हैं. वो ये नहीं जानते हैं कि भले भगवान किसी भी योनि में किसी भी समाज में क्यों न प्रकट हो जाएं, वो भगवान ही रहते हैं. उनकी भगवत्ता में तनिक भी कोई परिवर्तन नहीं होता है. भगवान सदैव भगवान रहते हैं. भगवान कोई पद नहीं है जो कि कोई ऐसे व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो पहले से भगवान न हुआ हो. दूसरे शब्दों में भगवान वो हैं जो पहले भी भगवान थे और जो भविष्य में भी भगवान रहेंगे. और जो पहले भगवान नहीं थे वो अब भगवान नहीं बन सकते, ना भविष्य में बन सकते हैं. तो ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व है. इस बात को लोग भलीभांति नहीं जानते हैं इसलिए अक्सर ये गलती कर बैठते हैं कि श्री राम को या श्री कृष्ण को एक साधारण व्यक्ति समझ बैठते हैं और फिर निंदा करते हैं. जिस नीति को, जिस नियमावली को भगवान ने मनुष्य समाज के लिए बनाया है ताकि हम सब शनै शनै सुसंस्कृत होकर भगवान की ओर आगे बढ़ें, हम ऐसे ही नियमावली और नीति का आरोप भगवान पर लगाते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि जिन नियमों को भगवान ने हमारे लिए बनाया है इन नियमों का पालन उन्हें भी करना चाहिए. तो साधारण दुनिया के नीति के दृष्टिकोण से हम भगवान का नाप तोल करते हैं, को नापने का प्रयास करते हैं, विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं. और इस नीति के दृष्टि से यदि ऐसे लगता है कि शायद भगवान ने कुछ ठीक काम नहीं किया हो तो हम निंदा करते हैं. कभी कभी हमारे मनमाने ढंग से बने हुए नीति आदि होते हैं. भगवान ने बनाए हुए नीतियों का पालन तो हमें सदैव करना चाहिए. ऐसा हम नहीं करेंगे तो उत्पात हो जाएगा सारे समाज में. परंतु जैसे भगवान जब श्री कृष्ण के रूप में आते हैं अवश्य नियम पालन करते हैं, परंतु कभी कभी ऐसे अद्भुत कार्य भी करते हैं जिससे अज्ञानी लोग बड़े बेचैन हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं. जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ में रासलीला की, या द्वारका में 16,108 रानियों से विवाह कर ली. ऐसी चीजों से जो अश्रद्धालु हैं, अल्पज्ञ हैं, वो भ्रमित हो जाते हैं. तो इसलिए भगवान कभी कभी ऐसे भी एक रूप स्वीकार करते हैं जिसमें वो हर कार्य को बिल्कुल ठीक करते हैं. एक आदर्श व्यक्ति, एक आदर्श मनुष्य। अब आदर्श होने के बाद भी, एक मर्यादा पुरुषोत्तम होने के बाद भी लोग उनकी निंदा करते हैं, वो दूसरी बात है। अब क्या करें, कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं जब हमारी निंदा कोई करते हैं। किसी भी व्यक्ति को अपनी निंदा सुनना पसंद नहीं है, बहुत बुरा लगता है, विष के समान लगता है जब अपनी निंदा हम कहीं से सुनते हैं। तो कोई सांत्वना की बात हो तो शायद ये है कि भगवान की भी निंदा होती है, तो हम सब साधारण मनुष्यों की बात तो क्या है। तो श्री राम जब प्रकट हुए तो ऐसा नहीं है कि किसी ने उनकी निंदा नहीं की, अधिकतर नहीं किया करते थे कोई, परंतु यहां वहां उस काल में कलयुग त्रेता युग में भी ऐसे कहीं इधर उधर लोग पाए जाते थे। फिर भी जो मनुष्यों के लिए, व्यवहार के लिए, बोलचाल के लिए, रहन सहन के लिए एक आदर्श उदाहरण चाहिए तो वो है श्री राम। इसलिए उनका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा का पालन हमेशा उन्होंने किया, हालांकि आवश्यकता नहीं है भगवान को किसी भी मर्यादा का पालन करने के लिए, वो मर्यादा से सदैव परे हैं। उनके लिए मर्यादा तो बस वही बनाते हैं, उनके कार्य ही उनकी मर्यादा है। आज यदि भगवान ने अपने आप के लिए एक मर्यादा निर्धारित कर ली तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कल यदि भगवान ने कुछ दूसरा कार्य करके उस मर्यादा का उल्लंघन किया तो भगवान ने कोई गलत काम किया। नहीं, तो जो नया कार्य भगवान करेंगे वो उनकी मर्यादा हो जाएगी और वो सही हो जाएगी। तो पुरुषोत्तम का अर्थ है कि वो उत्तम पुरुष है, अर्थात वो स्वयं भगवान है, साधारण व्यक्ति नहीं है। स्वयं भगवान आके जब मनुष्यों को सिखलाते हैं कि मर्यादा का पालन कैसे किया जाता है, तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। एक आदर्श मनुष्य कैसे होना चाहिए, एक आदर्श पुत्र कैसे होना चाहिए, एक आदर्श पति कैसे होना चाहिए, आदर्श राजा कैसे होना चाहिए, आदर्श क्षत्रिय कैसे होना चाहिए, आदर्श भाई कैसे होना चाहिए, ये भगवान श्री रामचंद्र ने अपने कार्यों से दिखलाया, स्पष्ट कराया। तो हमने सोचा कि श्री रामचंद्र के चरित्र की चर्चा क्यों न की जाए, रामचंद्र के गुणों का वर्णन बड़े सुंदर ढंग से वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में किया है, और सदियों से, सैकड़ों वर्षों से श्री रामचंद्र का गुणगान चलते आया है वैदिक सभ्यता में। बल्कि जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी भागवत की कथा बता रहे थे तो उस समय जब आठवां स्कंद या नौवां स्कंद के बाद नौवां स्कंद आया तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अब जब श्री रामचंद्र की बात आ रही है तो मैं बड़े संक्षेप में कहूंगा, क्योंकि आपने तो बचपन से ही श्री राम की कथाएं सुनी हैं। दूसरे शब्दों में 5000 वर्ष पूर्व अर्थात द्वापर के अंत में भी श्री रामचंद्र की कथाएं प्रचलित थी, घर घर में श्री रामचंद्र की कथाएं सुनी जाती थीं, बोली जाती थीं, और ये तो बस केवल 50-100 साल पहले की बात है कि यहां भी हमारे देश में ऐसे हुआ करता था। और कितने दुर्भाग्य की बात है कि आजकल जहां कृष्ण कथा, राम कथा आदि घर घर में हुआ करती थी, आजकल सिनेमा की कथा, राजनीति की कथा, धन की कथा और बेकार की कथाएं, अन्य इधर उधर की बातें बस किए जाते हैं लोग। किसी भी घर में ऐसे कोई संस्कार दिखाई नहीं पड़ते आजकल कि बचपन से ही सभी लोग सुबह शाम कृष्ण कथा या राम कथा कर रहे हैं ऐसे नहीं दिखाई पड़ता। सभी लोग टेलीविजन के सामने बैठे हुए होते हैं जब घर में होते हैं, या तो आजकल कहिए मोबाइल फोन के सामने बैठे हुए होते हैं या कंप्यूटर के सामने बैठे हुए होते हैं। परंतु ऐसे आके भक्तों के संग में बैठना, भगवान की कथा सुनना बहुत जरूरी है। हाँ, आजकल तकनीकी सुविधाओं के कारण यदि हम किसी वजह से नहीं आ पाते हैं सत्संग में, तो अपने घर में बैठ के रेडियो से हम सुन सकते हैं, ये सुविधा आजकल है। परंतु यदि कोई समस्या न हो हमारे लिए, शारीरिक समस्या इत्यादि, तो बेहतर तो यही है कि हम प्रत्यक्ष भक्तों के समक्ष बैठकर भगवान की कथा सुने। जो भक्तों के संग में बैठकर ध्यान से जब कथा सुनी जाती है तो उसका प्रभाव कुछ अलग ही होता है। तो ये प्रथा, ये संस्कृति हमारे देश में अनादि काल से चलती आई है, और बस ये थोड़े ही वर्ष पहले 50-100 वर्ष तक ये बहुत प्रचलित थी। तो श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि ऐसे कथाओं को और हमें बढ़ाना चाहिए, घर घर में, गांव गांव में, शहर शहर में, देश देश में फैलने चाहिए। रामायण के बारे में श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि दुनिया के लोग कहानियों को सुनना बहुत पसंद करते हैं, और यदि हमें समय मिले और अवसर मिले तो हम चाहते हैं कि हमारे जो शास्त्रों में, जैसे कि रामायण है इत्यादि, इनमें जितनी सुंदर सुंदर कथाएं हैं उनका वर्णन हम बड़े विस्तार में करें और दुनिया में ऐसे कथाओं का बाढ़ है प्रस्तुत कर दें, ताकि हर घर में लोगों को भगवान की कथाओं को सुनने के लिए सुअवसर मिल जाएगा। वाल्मीकि मुनि आदि कवि हैं, रामायण जो उनकी जो रामायण है वो आदि रामायण मानी जाती है। उनके पश्चात तो अनेक ऐसे ग्रंथ आए, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, ऐसे कई रामायण हैं। दक्षिण भारत में भी कंब रामायण है, बल्कि भारत के हर एक प्रांत में अलग अलग रामायण हैं, उपलब्ध हैं। स्थानिक भाषाओं में भाषांतर हुआ है, कभी वहां के संतों ने अपने अपनी भाषाओं में अपने अपने साक्षात्कार के अनुसार भगवान राम के लीलाओं का वर्णन किया है। और विदेशों में भी, जैसे थाईलैंड, इंडोनेशिया इत्यादि, ऐसे देशों में भी श्री राम की कथाएं परिवर्तित रूप में थोड़ी बहुत विद्यमान हैं, आज भी हैं। बल्कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केवल 200 साल पहले तक थाईलैंड जैसे देश में राजाओं का नाम राम हुआ करता था, राम एक, राम दो, राम तीन, राम चार। पहले राम एक, फिर उनके पुत्र राम दो, फिर उनके पुत्र राम तीन, ऐसे। तो ये संस्कृति, रामायण की संस्कृति बहुत पुरानी है और विश्वव्यापी है। वास्तव में केवल आज जिस देश को हम भारत मानते हैं, वहीं इस भारत देश की सीमाओं तक, राजनीतिक सीमाओं तक सीमित नहीं थी, ये तो विश्वव्यापी थी। परंतु आज वो सब खो चुके हैं, सारी दुनिया के लोग खो चुके हैं इस संस्कृति को, तो पुनः स्थापित करना है। प्रभुपाद जी अक्सर कहा करते थे कि हमारे राजनेता चाहते हैं कि देश में राम राज्य की स्थापना हो, अर्थात सब कुछ ठीक ठाक चले, प्रजा सुखी हो, तरह तरह की सुविधाएं प्राप्त हों, किसी को कष्ट नहीं हो, बीमारी नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे राम राज्य के सपने राजनेता प्रजा को दिलाते हैं, परंतु राम नहीं चाहिए उन्हें, कृष्ण नहीं चाहिए उन्हें, भगवान की भक्ति नहीं करनी है। नास्तिकवाद के वातावरण में भला राम राज्य का निर्माण कैसे हो सकता है, संभव नहीं है। श्रीपाद वाल्मीकि जी ने बहुत सुंदर ढंग से 24,000 श्लोकों में रामायण में श्री राम की लीलाओं का वर्णन किया है। वैसे पुराणों में बताया जाता है कि ब्रह्मलोक में जो रामायण है वो 100 करोड़ श्लोकों का है, जिस तरह से श्रीमद् भागवत यहां 18,000 श्लोकों का है जो इस समय उपलब्ध है हमारे लिए, परंतु देवलोकों में और भी श्रीमद् भागवत है जिनमें और भी कई श्लोक हैं। उसी तरह से राम कथा हमारे पास यह उपलब्ध जो ग्रंथ है वो तो केवल 24,000 श्लोकों का है, परंतु ऊपरी लोकों में इस ब्रह्मांड में भगवान राम की कथा और विस्तार से कही जा रही है, सुनी जा रही है। वैसे तो भगवान की कथाएं अनंत हैं, ऐसे बताया जाता है कि अनंत शेष अनादि काल से भगवान का गुणगान करते आए हैं, परंतु आज तक भगवान के गुणगान की समाप्ति तक नहीं पहुंचे और कभी पहुंचेंगे भी नहीं, क्योंकि भगवान अनंत होने के कारण उनकी लीलाएं भी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं, उनका यश अनंत है, उनके भक्त अनंत हैं, उनके नाम अनंत हैं। भगवान से जो भी कुछ संबंधित है वो सब अनंत है। तो भगवान की कथा जब की जाती है तो इसकी कोई सीमा नहीं हो सकती। पृथु महाराज श्रीमद् भागवत में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे लाखों लाखों कान हो जाएं, आप मुझे ये वरदान प्रदान करें कि लाखों कान मुझे मिले, क्योंकि मैं कृष्ण कथा या आपकी कथा सुनना चाहता हूं। तो कहां सुनना चाहते हैं? वो कहते हैं, आचार्यों ने टीका लिखी है, वो कहते हैं कि यदि पृथु महाराज चाहते हैं कि एक ही जगह बैठकर लाखों कान हो जाएं तो उसमें क्या लाभ, दो कान तो पर्याप्त हैं एक स्थान में बैठ के कथा सुनने के लिए। परंतु पृथु महाराज की लालसा ऐसी नहीं है, ऐसी छोटी मोटी लालसा नहीं है उनकी। वो जानते हैं कि इस ब्रह्मांड के कोने कोने में भगवान की कथा गूंज रही है, हर लोक में भगवान की कथा चल रही है, और इस ब्रह्मांड में ही नहीं, इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। इन सभी ब्रह्मांडों में, समस्त ब्रह्मांडों में, हर एक लोक में भगवान की कथा चल रही है। और भगवान के धाम की बात तो दूर ही है, वहां तो चल ही रही है। तो पृथु महाराज चाहते हैं कि यदि मैं यहां कृष्ण कथा या भगवत कथा में बैठा हूं तो वहां जो चल रहा है वो कथा से मैं वंचित रह जाऊंगा, इसलिए मुझे बहुत सारे कान चाहिए, ताकि जहां भी सृष्टि में, भौतिक सृष्टि में और आध्यात्मिक सृष्टि में भगवत कथा चल रही है, मैं वहां उपस्थित रहूं एक ही समय। और आचार्य ने कहा है कि यदि कोई पृथु महाराज से कहे कि भाई ये तो असंभव है, ऐसी कैसी इच्छा मन में रखते हो जो कि संभव नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति एक ही समय हर एक कथा में बैठे जो कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों में एक साथ चल रहे हैं। तो पृथु महाराज उत्तर देते हैं, मुझे पता है यह असंभव है, फिर भी मैं चाहता हूं। तो ये होती है भगवान की कथा सुनने की लालसा, क्योंकि भगवान इतने मधुर हैं कि उनकी कथाओं को सुनने में बहुत रुचि उत्पन्न होती है सुनने वाले के हृदय में। तो श्री राम की कथाएं भी इतनी मधुर हैं, हम वर्तमान काल का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की कथाएं सतत चलती रहती हैं, कि स्वयं भगवान भी अपनी कथाओं को सुनने में पसंद करते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं। बल्कि रामायण में ही आगे चल के इस बालकांड की शुरुआत में वाल्मीकि जी ऐसे बताते हैं कि जब लव कुश रामायण का गान करते करते इधर उधर भ्रमण करते हुए अयोध्या आ पहुंचे तो अयोध्या वासियों ने बड़े आनंद से आश्चर्यचकित होकर इन दो तरुणों के मुखारविंद से रामायण सुनी और खबर श्री राम के कानों तक पहुंची कि ये दो लड़के आए हैं, बहुत मधुर गीत गा रहे हैं, आपका गुणगान हो रहा है, तो श्री राम भी सुनना चाहते थे। तो उनको बुलाया। उस समय श्री राम नहीं जानते थे कि ये कौन है वास्तव में लव और कुश। और जैसे जैसे इन्होंने अपनी गीत इनका अपना गीत शुरू किया, राम बिल्कुल भाव विभोर हो गए। उनको पता ही नहीं चला कि कैसे समय बीत रहा है, बिल्कुल मग्न हो गए उस कथा में। यद्यपि वो उन्हीं की कथा थी, उन्हीं का गुणगान हो रहा था। तो ये है भगवत कथा, इतना रसमय होता है कि स्वयं भगवान आकर्षित होते हैं। भगवान के जितने भी गुण हैं वो सब भगवान को ही आकर्षित करते हैं। तो बद्ध जीव और जो शुद्ध भक्त भी हैं और बद्ध जीव भी हैं, वो सब आकर्षित क्यों नहीं होंगे। द्वारका में भी भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना प्रतिबिंब देखा, रत्नों से सुशोभित एक खंभे में महल के अंदर, सोच में पड़ गए कि इतना सुंदर व्यक्ति कौन है ये, ऐसा सौंदर्य भला कहां से हो सकता है, कैसे संभव है। उन्हें पता नहीं चले कि ये मैं स्वयं हूं और ऐसा सौंदर्य कैसे संभव है। तो वैसे वाल्मीकि मुनि ने ब्रह्मा जी की कृपा से अपने आंखों के सामने श्री राम की लीलाओं का दर्शन किया। इस तरह किया कि मानिए हम किसी सिनेमा के सामने बैठकर सारे दृश्य देख रहे हो। और ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था वाल्मीकि जी को कि आप जो भी लिखोगे वो सत्य होगा। और यावश्चंद्र दिवाकरो, जब तक सूरज रहेगा, जब तक चांद रहेगा, जब तक पृथ्वी में पहाड़ रहेंगे, नदियां रहेंगी, समुद्र रहेंगे, तब तक आपके द्वारा विरचित जो रामायण ग्रंथ है वो प्रचलित रहेगा और लोग इसको पढ़ेंगे, इसको सुनेंगे, इसको गाएंगे। दूसरे शब्दों में युगों के परिवर्तन के बाद भी रामायण नष्ट नहीं होता। रामायण तो त्रेता युग की कथा है, उसके बाद द्वापर के बाद कली, परंतु ब्रह्मा जी ने वरदान तो दे ही दिया है कि जब तक ये समुद्र आदि सब रहेंगे, पहाड़ रहेंगे, तब तक यहां तो क्या स्वर्ग लोक में, ऊपरी लोकों में भी भगवान श्री राम का गुणगान, जैसे कि वाल्मीकि जी ने किया है, ये चलता रहेगा। तो वाल्मीकि जी आदि कवि हैं। जब एक बार उनके आश्रम में वो बैठे थे तो वहां नारद जी आए। नारद जी भी उनके गुरु हैं। अब नारद जी के आने पर वाल्मीकि मुनि जो अपने शिष्यों के साथ में बैठे हुए थे अचानक उठे और यथा उचित जैसे है एक सम्माननीय संत का स्वागत जैसे करना चाहिए वैसे उन्होंने किया। उनको आसन दिलाया, आसन पर बैठ के उनकी सेवा की, मीठे शब्दों के द्वारा स्वागत किया। और फिर जैसे कि प्रथा है, जब कोई संत आते हैं तो उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए, ऐसी कोई जिज्ञासा होनी चाहिए जो बहुत महत्वपूर्ण हो, जिसमें सबका कल्याण हो सके, अपना भी कल्याण हो सके और सबका कल्याण हो सके। ये जिज्ञासा नहीं करनी है कि इस बार चुनाव में कौन जीतेगा, हमारे व्यवसाय में कैसे प्रगति कर सकते हैं, नहीं। तो कोई ऐसी महत्वपूर्ण बातें पूछनी चाहिए। तो जब वाल्मीकि जी आए, जब नारद जी वहां आए, तो वाल्मीकि जी अपने आप में बड़े मुनि थे, ऋषि थे, फिर भी उन्होंने ठीक समझा कि वो कोई प्रश्न करें। और वैसे ये जो संवाद हुआ वाल्मीकि जी और नारद जी के बीच में, ये कब हुआ? जब वाल्मीकि जी ने पूछा कि मैं जानना चाहता हूं आपसे कि क्या कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो बिल्कुल आदर्श हैं, जिनके गुण इस प्रकार से हैं, और फिर उनका उल्लेख वो करेंगे, और फिर नारद जी उत्तर देंगे कि हाँ ऐसे व्यक्ति हैं, उनका नाम है श्री राम, और फिर संक्षेप में नारद जी सारे रामायण का वर्णन करते हैं, संक्षिप्त रामायण। अब इस संक्षिप्त रामायण का वर्णन करते करते नारद जी भूत क्रिया का प्रयोग करते हैं, पास्ट टेंस, कि ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। और फिर सारा वर्णन करते करते जब कथा पहुंची लंका में और श्री राम का विजय हुआ, श्री राम ने रावण का वध किया, सीता देवी को वापस लेकर आए, सारी वानर सेवा भी लौट के आई अयोध्या में, वहां राज्याभिषेक हुआ श्री रामचंद्र का, और वहां राज्य स्वीकार करके राम राज्य प्रारंभ हो गया वहां पर। तो इस वर्णन के बाद जब आगे वर्णन बढ़ा रहे हैं नारद जी, तब भविष्य क्रिया का प्रयोग करते हैं कि अब आने वाले सालों में राम राज में ऐसे होगा। तो इससे हम क्या जान सकते हैं कि ये जो संवाद नारद जी और वाल्मीकि मुनि के बीच में हुआ, वो उस समय हुआ जब श्री रामचंद्र लंका से लौट के आए थे और उन्होंने राजगद्दी स्वीकार की थी अयोध्या की, और फिर आगे चल के वो 11,000 साल उन्होंने राज्य किया, और उनका तिरुभाव तत्पश्चात हुआ, और अयोध्या के जितने भी निवासी थे उन सबको वो साथ ले गए वापस परव्योम अयोध्या में। परव्योम अयोध्या का अर्थ है जो आध्यात्मिक जगत की अयोध्या है। वैसे इस अयोध्या और उस अयोध्या में अंतर नहीं है, जैसे कि इस वृंदावन और उस वृंदावन में कोई अंतर नहीं है, फिर भी भेद इसलिए किया जाता है कि ये भौतिक जगत में प्रकट हो जाता है। है तो वही धाम। तो नारद जी और वाल्मीकि मुनि के बीच में संवाद हुआ, श्री राम एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आदर्श हैं, वाल्मीकि मुनि जान गए, फिर एक घटना हुई, आगे चल के हो सके समय मिले तो इसका वर्णन करेंगे संक्षेप में, और फिर ब्रह्मा जी वहां पर आए, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया वाल्मीकि मुनि को कि आप रामायण की कथा आप प्रारंभ कीजिए, और वाल्मीकि मुनि के ऊपर ऐसी कृपा हुई कि वो बिल्कुल स्पष्ट देख सके, न केवल ऐसी लीलाएं जो अब तक हो चुकी थीं, बल्कि अब जो हो रहा है वो भी देख रहे थे साफ साफ। और इतना ही नहीं, भविष्य काल में आने वाले 11,000 वर्षों तक श्री राम की लीलाएं क्या हो रही हैं, अयोध्या में क्या हो रहा है, वो स्पष्ट देख रहे थे। भगवान और उनके शुद्ध भक्तों की कृपा से कभी कभी न देश न काल न पात्र की सीमा लागू होती है। इसलिए वाल्मीकि मुनि भविष्य की बातों को भी देख सके और उन्होंने वर्णन किया। तो ये वाल्मीकि रामायण ग्रंथ की रचना कब हुई? जब श्री राम अयोध्या में राज्य कर रहे थे, लंका से बस लौट के आए थे। ऐसे हम समझ सकते हैं वाल्मीकि रामायण पढ़ के कि श्री राम जब अयोध्या से चले गए वनवास के लिए निकल पड़े तो उनकी आयु 27 वर्ष की थी लगभग, और फिर वो रहे 14 महीनों तक बाहर, फिर 14 सालों तक, फिर वापस आए, और वापस आने के बाद शीघ्र ही ये घटना हुई होगी, वाल्मीकि मुनि ने रामायण की रचना की, इसलिए उन्होंने कहा कि आने वाले 11,000 वर्षों तक ये राम राज्य चलेगा। तो कुल मिलाकर श्री राम ने 11,000 सालों तक राज्य किया। तो अब रामायण का जब रामायण की रचना जब करते हैं वाल्मीकि जी, तो उन्होंने वैसे प्रमुखतः 6 कांड बनाए हैं और अंत में एक कांड है उत्तर कांड, 7वां कांड। बाल कांड से शुरुआत होती है, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड जब वनवास में जाते हैं, और फिर जब हम्पी किष्किंधा पहुंचते हैं सुग्रीव के साथ, आदि समझौता कर लेते हैं दोस्ती का, तो वो किष्किंधा कांड है। फिर सीता देवी को ढूंढने के लिए श्री राम वानर सेना को विभिन्न दिशाओं में भेजते हैं, हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुंच के सीता देवी की खबर वापस लाते हैं, सुंदर कांड। उसके बाद श्री राम वानर सेना के साथ लंका पहुंच जाते हैं, युद्ध कांड। तो इस तरह से ये 6 कांड हैं, और उसके बाद उत्तर कांड। तो ऐसे 24,000 श्लोकों में वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है। तब लौट आते हैं उस प्रसंग में जबकि वाल्मीकि मुनि देख रहे हैं कि नारद जी उनके आश्रम में पधारे हैं। तो वाल्मीकि जी पूछते हैं कि ऐसे बताइए कि दुनिया में क्या ऐसे कोई व्यक्ति का होना संभव है जिनके निम्नलिखित या ऐसे ये सारे गुण हैं, तो क्या लक्षण होने चाहिए ऐसे व्यक्ति के, जो एक आदर्श व्यक्ति हो, जो वाल्मीकि मुनि ने कल्पना की, हमें एक आदर्श व्यक्ति की कल्पना करनी है। तो कहते हैं हम ऐसे व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, यदि ऐसा व्यक्ति कोई है तो इस दुनिया में, जो सर्वप्रथम गुणवान हो। अब ये गुणवान आजकल अपने बच्चों को कौन बनाना चाहते हैं? सभी बच्चों को धनवान बनाना चाहते हैं, गुणवान कौन बनना चाहता है आजकल? हम धनवान बन जाए तो सारे अच्छे गुण आ जाते हैं, ऐसे लोगों की समझौता, ऐसे लोगों का मानना है। धन आ जाए तो सारी प्रसिद्धि आएगी, हम अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे, समाज हमें सज्जन व्यक्ति मानने लगेगा। परंतु वाल्मीकि मुनि सर्वप्रथम ये पूछना चाहते हैं कि हम ऐसे एक आदर्श व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, यदि ऐसे वो हैं तो इस दुनिया में, जो सर्वप्रथम गुणवान है, दूसरी बात जो वीर्यवान है, वास्तव में जो तेजस्वी हैं, शक्तिशाली हैं, जो धर्मज्ञ हैं, धर्म के तत्वों को भली भांति जानते हैं, सही क्या है गलत क्या है, ऐसे व्यक्ति को धर्मज्ञ कहते हैं। धर्मज्ञ, ज्ञ मतलब जो जानते हैं, कृतज्ञ हैं साथ साथ। कृतज्ञ होना ये बहुत दुर्लभ बात है आजकल के हिसाब से देखा जाए तो। कृतज्ञ कौन होता है व्यक्ति? जब हमारे लिए किसी ने कोई अच्छा काम किया हो, हमारे हित के लिए किसी ने सोचा भी हो, कार्य करने की बात तो दूर रही, किसी ने हमारी भलाई के बारे में सोचा भी हो, दो अच्छे शब्द कहे भी हो, तो उस व्यक्ति के प्रति हमें बहुत आभारी होना चाहिए, बहुत कृतज्ञ होना चाहिए। ये श्री राम की सभ्यता है, ये भगवान का गुण है। ईश्वरेर स्वभाव भक्तेर न लय अपराध, अल्प सेवा बनु बहुमाने आत्म पर्यंत प्रसाद। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं भगवान का लक्षण ये है कि भक्तों का अपराध वो स्वीकार नहीं करते हैं, क्षमा कर देते हैं। जैसे माता अपने छोटे बच्चे का अपराध स्वीकार नहीं करती है, उसी तरह से भगवान भक्तों के किए हुए जाने अनजाने में जो अपराध होते हैं वो भी माफ कर देते हैं। परंतु अल्प सेवा बहु माने, यदि छोटी भी सेवा कोई भक्त करता है उनके लिए तो उसको बहुत बड़ी चीज मानते हैं भगवान, और इतना कृतज्ञ होते हैं भगवान उस भक्त के प्रति आत्म पर्यंत प्रसाद कि वो अपने आप को भी उस भक्त के हवाले करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये है कृतज्ञता की सीमा, थोड़ी सी सेवा। तो वैसे श्री राम के चरित्र से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हमें भी इस दुनिया में कैसे अन्यों के साथ बर्ताव करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। अब भक्ति के सिद्धांत तो अपने जगह में बहुत अच्छे हैं, हम तो प्रतिदिन भागवत क्लास में गीता कक्ष में हम सुनते रहते हैं, पढ़ते भी हैं, परंतु इन तत्वों को अपने जीवन में उतारना, अपने जीवन में आचरण करना, अपने व्यवहार में इनको लाना, ये बहुत मुश्किल है। इसलिए कई बार हमारे दर्शन में, दर्शन अर्थात भागवत के दर्शन जिसको हमने स्वीकार किया है, और हमारे व्यवहार में काफी अंतर होता है। हमारी बातें भक्ति की हो सकती हैं परंतु तो व्यवहार कुछ और हो सकता है। इसलिए जो व्यवहार और हमारे आदर्श में जो अंतर है उसको जितना हो सके उतना कम करने का प्रयास करना चाहिए। एक सही भक्त अपने आचरण से जाना जाता है, न केवल अपने वाणी से। अंततः हमारे अंदर क्या है अन्य लोग कैसे समझ सकते हैं? हमारे व्यवहार से, हमारे रहन सहन से, हमारे आचरण से। इसलिए भक्ति के जो लक्षण है व्यक्ति के व्यवहार से प्रकट होते हैं। हालांकि जो बहुत ही आगे बढ़े हुए भक्त होते हैं, महाभागवत होते हैं, उनके व्यवहार को कभी समझना मुश्किल होता है। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेह न बुझाए, कि ऐसे महान भक्तों के कार्यों को कभी कभी हम समझ नहीं सकते हैं। फिर भी हम साधारण भक्तों की बात कर रहे हैं, हम सब जैसे। तो श्री रामचंद्र के उदाहरण से, उनके चरित्र से, उनके कार्यों से हम सीख सकते हैं कि हमारा व्यवहार अन्यों के प्रति इस दुनिया में कैसे होना चाहिए, तब हम सच्चे और अच्छे वैष्णव बनेंगे। पहले मनुष्य बनना है फिर वैष्णव बनेंगे। सभ्यता, एक सभ्य मनुष्य बनना ये बहुत आवश्यक है। वैष्णवता तो बहुत ऊंची चीज होती है, बहुत मुश्किल है सच्चा वैष्णव बनना। प्रयास तो हम सबका चल ही रहा है, इसलिए हम भगवान और ऐसे महान भक्तों के चरित्र को पढ़ते हैं और सुनते हैं। एक संत ने कहा है, और अक्सर इस बात को हम दोहराते रहते हैं कि हम इस चीज को बहुत पसंद करते हैं, इतना अच्छा उपदेश है ये। उन्होंने कहा है कि दो चीजें ऐसी हैं जो हमें सदैव याद रखनी चाहिए, और दो चीजें ऐसी हैं जो हमें सदैव भूलनी चाहिए। कौन सी दो चीजें हैं जो हमें हमेशा याद रखने चाहिए? एक, जो हमने दूसरों के प्रति कोई बुरा किया हो, और दूसरा, जो अन्यों ने हमारे प्रति कोई भला किया हो। इन दो चीजों को हमेशा याद रखना चाहिए। और वो दो कौन सी चीजें हैं जिनको हमें भूलना चाहिए? जो हमने दूसरों के प्रति कोई भला किया है वो भूल जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि उनको याद दिलाते रहें 20 साल बाद भी, देखो तुम्हारे हमने ऐसे किया था, नहीं। जैसे ही कर लिया बस भूल जाता है कि हमने कर लिया। और दूसरी बात क्या है जो हमें भूल जानी चाहिए, दूसरों ने जो हमारे प्रति जो बुरा किया है वो भी हम 20 साल तक याद रखते हैं, बुढ़ापे में भी याद रखते हैं, तो वो भूल जाना चाहिए। तो कृतज्ञ वो व्यक्ति होता है जो इस बात को नहीं भूलता कि इस व्यक्ति ने मेरे लिए कुछ भला किया है। श्री राम का चरित्र ऐसे था, कृतज्ञ। और क्योंकि आजकल की दुनिया में ऐसे लक्षण विरला ही पाए जाते हैं, किसी में दिखाई नहीं पड़ते हैं। आजकल लोग इतने स्वार्थी हो चुके हैं इस कलयुग में, कृतज्ञता जैसे जो गुण हैं वो प्राय दिखाई देते हैं, कहां दिखाई देते हैं। तो श्री राम जब वाल्मीकि मुनि जिज्ञासा कर रहे हैं तो वो जानना चाहते हैं ये जिज्ञासा ये क्या, क्षमा कीजिए, कृतज्ञता ये कैसी बहुत महत्वपूर्ण गुण है। फिर कहते हैं सत्य वाक्य है, जो सदैव सत्य वचनी हो, जो कभी भी सत्य के मार्ग से हटेगा नहीं, क्या ऐसे कोई व्यक्ति है? आजकल तो झूठ बोलना ही सत्य है, असत्य बोलना झूठ है। परंतु वाल्मीकि मुनि चाहते हैं इस प्रश्न के द्वारा हम सबको सिखलाने के लिए कि हमारे अंदर कैसे गुण या कैसे लक्षण होने चाहिए। दृढ़ व्रत, जब कोई निर्णय व्यक्ति लेता है तो उसका उसको पूर्ण करके ही रहता है, अपने व्रत में अपने संकल्प में दृढ़ रहता है, डामाडोल नहीं होता। जब जीवन में कोई कष्ट आता है तो उसे डामाडोल न होकर अपने व्रत का पालन करते रहता है, कभी छोड़ता नहीं है। फिर आगे कहते हैं चरित्रवान, चरित्रेण को युक्त है, जो अच्छे अच्छे गुणों से जो युक्त हैं, ऐसे व्यक्ति को हम देखना चाहते हैं। सर्वभूतेषु को हितः, जो समदर्शी हैं, सभी के हितैषी हैं, जो भेद नहीं करते हैं कि ये मेरे समाज वाला व्यक्ति है, ये मेरे देश वाला है, ये मेरे जाति वाला है, ये मेरी भाषा बोलने वाला व्यक्ति है, इसलिए मैं इनके प्रति पक्षपात करूंगा, विशेष कृपा इनको दूंगा लेकिन उनको नहीं दूंगा, ऐसे नहीं। और आगे वाल्मीकि जी पूछते हैं विद्वान भी होने चाहिए, वो समर्थ भी होने चाहिए, भगवान ही हैं जो समर्थ हो सकते हैं, संपूर्णतः दृष्टि से समर्थ। समर्थ वो व्यक्ति होता है जो काबिल है, हर चीज करने में काबिल। हम तो इंसान हैं इसलिए हमारे सामर्थ्य की सीमा तो होती ही है, परंतु क्या ऐसे व्यक्ति है जो वास्तव में समर्थ हो, ऐसे वाल्मीकि जी पूछना चाह रहे हैं। प्रिय दर्शन है, जिनका चेहरा दिखने में बहुत सुंदर हो, दिखने में सदैव वो मन प्रसन्न हो जाए ऐसे व्यक्ति को देखकर। जब कोई व्यक्ति के किसी व्यक्ति के चेहरे में प्रसन्नता दिखाई पड़ती है तो हम भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो क्या ऐसे व्यक्ति है जो सदैव प्रसन्न रहते हैं, जिनको देखने मात्र से हमारा मन भी प्रसन्न हो उठता है, ऐसे क्या व्यक्ति कोई हैं? वाल्मीकि जी पूछ रहे हैं। आत्मवान, जिसने अपने आप को वश कर लिया है, अर्थात अपने मन को, इंद्रियों को आदि। जित क्रोध है, क्रोध को जीत लिया है। द्युतिमान, जो तेजस्वी हो, प्रकाशमान हो। अनसूयक है, जिसके मन में ईर्ष्या या द्वेष नाम की चीज नहीं है, जो दूसरों में कोई दोष नहीं देखता है, दोष देखने की प्रवृत्ति से जो मुक्त हो चुका है। अनसूयक है, और ये तो कलयुग में बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कलयुग ही है दोषों का युग। कलो दोष निधे राजन, जब हम समुद्र में जाते हैं यदि हम आश्चर्यचकित हो जाएं कि सब जगह पानी कैसे है, तो कोई कहेगा भाई समुद्र में आए हो तो पानी ही तो होगा ना। तो उसी तरह से हम इस समुद्र में निवास कर रहे हैं जिस समुद्र को कलयुग कहते हैं। तो इस कलयुग में सब जगह दोष